ओम शांति। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी गांव में आया और वहां पर पनघट था। पनघट अर्थात कुआ, जहां से गांव की स्त्रियां पानी भरती थी। वो थक गया था इसलिए वहां सो गया और उसने एक पत्थर को अपनी तकिया बना दी और उस कुएं के पास वो बौद्ध भिक्षु सो गए। थोड़ी देर में वहां गांव की स्त्रियां आने लगी, पनिहारिन। वो पनिहारिन एक एक करके आकर पानी भरने लगी। तो एक स्त्री ने उस सन्यासी को देखा और कहा, सोते हुए देखा और कहा, संसार का सन्यास ले लिया परंतु अभी तक तकिए का मोह नहीं गया। तो सन्यासी को अभी आंख लगी ही थी तो उसने सुन लिया जो स्त्री ने कहा। तो वो उठ गया और उसने वो पत्थर लेकर फेंक दिया। तब तक वहां एक दूसरी स्त्री आ गई और उसने कहा, सन्यास ले लिया पर अकड़ अभी तक नहीं गई, पत्थर फेंक दिया ना उसने, अहंकार अभी भी उतना ही है। दूसरी स्त्री ने कहा, सन्यासी उठकर खड़ा हो गया। एक तीसरी स्त्री थी वहां पर पानी भरने आई। वो कहती है, तुम हमारे कहने पर क्यों अपना जीवन बदलते हो? हम तो कुछ ना कुछ कहेंगी। किसी ने कहा, पत्थर क्यों लिया तो तुमने पत्थर फेंक दिया। किसी ने कहा, अकड़ है तुम खड़े हो गए। और कोई कुछ कहेगा, तुम हमारा क्यों सुनते हो? वहां एक चौथी स्त्री रहती है, वो बहुत अच्छी बात कहती है। वो कहती है, हम पनिहारिन आएगी और जाएगी, हम स्त्रियां आएगी और पानी भरेगी और जाएगी, तुम हरि के गुण गाते रहो। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दो। तुम क्या करो, अपने हरि के गुण गाते रहो। क्योंकि ये दुनिया, चाहे हम कुछ भी करें, तो कुछ ना कुछ तो टोकेंगी जरूर। शंकर जी और पार्वती जी निकलते एक बार घूमने फिरने के लिए, नंदी बैल कुल साथ में लेकर। तो एक गांव से गुजरते हैं, लोग कहते हैं, कैसे मूर्ख दाम्पत्य है, इतना बड़ा नंदी बैल है फिर भी पैदल जा रहे हैं। उनको लगता है, अरे बात तो सही है। तो शंकर जी सोचते हैं, क्यों ना मैं पार्वती को उसमें बिठा दूं। तो पार्वती को बैल में बिठा देते हैं और चालू होते हैं। आगे चल के लोग कहते हैं, कैसी स्त्री क्रूर है जो पति परमेश्वर को पैदल चलाती है और खुद आराम से बैठी हुई है। तो पार्वती को बहुत बुरा लगता है, बात तो सही है, मेरा पति परमेश्वर, सारी दुनिया इसकी पूजा करते और मैं इसको पैदल चला रही हूं। तो कहती है, नहीं नहीं, मैं उतरती हूं, आप बैठ जाओ। तो शंकर जी बैठ जाते हैं और आगे चलती है सवारी। तो लोग कहते हैं, पति का कर्तव्य है पत्नी की संभाल करना, कैसा निर्दयी पुरुष है जो अपनी पत्नी को चलाता है और खुद आराम से बैठा हुआ है। कलयुग आ गया, घोर कलयुग। तो शंकर जी को लगता है, बात तो ये भी सही है। तो वो कहते हैं, फिर वो दोनों ही बैठ जाते बैल पर और जाने लगते हैं। लोग कहते हैं, कितने निर्दयी मनुष्य है, जानवर कुछ बोलता नहीं इसलिए उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं। दोनों ही आराम से बैठे हैं पर जानवर की क्या हालत हो रही है किसने सोचा भी नहीं। उनको लगता है, बात तो ये भी सही है, क्या करें। तो थोड़ी देर के बाद शंकर जी उस बैल के दो पैर पकड़ लेते हैं और पार्वती दो पैर, और पकड़ के दोनों चलने लगते हैं सिर पर उठाकर। लोग कहते हैं, कितने मूर्ख लोग हैं, देखो ऐसे मूर्खों का जमाना आ गया है, इन जानवर को पकड़ कर ले जा रहे हैं। चाहे हम कुछ भी करें, दुनिया कुछ ना कुछ करेगी जरूर, कहेगी जरूर। इसलिए जो सन्यारी ने सन्यासी से कहा था, हम चाहे कुछ कहें ना कहें, तुम एक प्रभु के गुण गाए जाओ। चाहे दुनिया कुछ कहे ना कहे, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, चाहे आग लगे बस्ती में, परंतु हमें किस में रहना है? अपनी मस्ती में, ईश्वरीय नशे में, नारायणी नशे में, रूहानी इलाही अलौकिक इंटॉक्सिकेशन, खुमारी मस्ती में, ऐसी ईश्वरीय मस्ती हमें अपने अंदर धारण करनी है। सारी धारणाएं करो तो लोग टोकेंगे, सारी धारणाएं छोड़ दो फिर भी टोकेंगे, सारे नियमों को पालन करो टोकेंगे, क्यों कर रहे हो? और एक दिन जब छोड़ देंगे तो कहेंगे। अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था, कुछ बच्चे बाप को छोड़ देते हैं तो लोग पूछेंगे, तुम तो कहते थे यहां भगवान आया, आप क्या हुआ? एक माता जी ने अपने ज्ञान में चलने वाली माता जी, पक्की एकदम, अपने बेटे को ज्ञान में लाया, उसी की वजह से बेटा ज्ञान में आया। और जब बेटा ज्ञान में आया तो वो एकदम पक्का कुमार बन गया, और उसने कहा अभी मैं शादी नहीं करूंगा। तो माताजी ने कहा शादी तो तुमको करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे बहू चाहिए, और उसी ने ज्ञान में लाया था, परंतु उसको अब बहू चाहिए, तो वो तो पीछे पड़ गई बेटे की। कुमार तो एकदम पक्का था, उसने कहा बिल्कुल नहीं, परंतु मां ने कहा तुमको करनी पड़ेगी मेरे लिए। तो फिर आखिर वो कुमार मान गया और बहू घर में आ गई, परंतु बहू ऐसी खतरनाक आ गई कि रोज झगड़े, सासू और बहू के रोज झगड़े। तो बेटे ने एक दिन मां से कहा, देखा तुमने ही तो कहा था ना शादी करो। तो मां ने कहा, कहा तो मैंने था पर की तो तुमने ना, मेरे कहने से क्या होता, की किसने, तुमने ना। तो चाहे कुछ करो या ना करो, दुनिया में जो भी होता रहे होने दो, परंतु हमें क्या रहना है, अपनी मस्ती में, रूहानी नशे में, नारायणी नशा। तो स्वयं को इस नशे में रखना है। कौन से नशे में, कौन सी मस्ती में? पांच चीजों की मस्ती। अंग्रेजी का शब्द है MASTI, MASTI, चार शब्द है, पांच शब्द है। तो एक ब्रह्मा कुमारी अर्थात सबसे पहला है M, मुरली, मुरली की मस्ती, मुरली की धुन, मुरली का नशा, मुरली का इंटॉक्सिकेशन, मुरली की खुमारी। गोपिया वृंदावन में, गोकुल में, जैसे ही सुनती थी कृष्ण की बांसुरी, क्या होता था उनको, क्या होता था क्या नाचने लगती थी, और क्या होता था गोपियों को, सब घर बार छोड़कर चली जाती थी काम काज, काजल लगा रही है, ऐसे ऐसे काजल लगाते लगाते काजल इधर चला जाता था, पानी भर रही है, पानी भर रही है, भर रही है, नीचे का भर गया फिर भी डाल ही रही है, खो जाती थी, मगन हो जाती थी। तो सबसे पहली जो मस्ती है, पहला जो नशा है, वो किसका होना चाहिए, मुरली, जो मुरली के नशे में चूर है, उसे संसार क्या कह रहा है, संसार में क्या हो रहा है, जश्न हो रहा है या आग लग रही है, कोई लेना देना नहीं। वो अपने नशे में है, परमात्मा की मुरली के नशे में मगन। तो ऐसी अपनी मगन अवस्था बनाएंगे, किससे? मुरली से। परंतु इस मुरली का करेंगे क्या? कैसे मुरली से नशा चढ़े? क्या किया जाए जो मुरली का नशा चढ़े? मुरली का स्टडी, जैसे लौकिक स्टडी की जाती है, वैसे कौन सी स्टडी करनी है? मुरली की स्टडी करनी है। जैसे लौकिक में पढ़ाई पढ़ी जाती है, वैसे मुरली भी एक पढ़ाई है। इस मुरली से रोज 5 टॉपिक निकालने हैं। क्या करेंगे? टॉपिक्स निकालना है और सारे दिन भर उसके ऊपर सोचना है या थोड़ा सा लिखना है। एक टॉपिक हम आपको दे रहे हैं जिसके ऊपर आपको कल लिखना है, देहभान का भूसा और माया का घूसा। देहभान का भूसा और माया का घूसा। बॉक्सिंग, भूसा पता है ना क्या है? भूसा क्या होता है? वही जो बोल रहे हैं। तो रोज की मुरली से, आज की मुरली से निकाला हुआ टॉपिक है, रोज की मुरली से क्या करेंगे? टॉपिक्स निकालेंगे और टॉपिक्स का क्या करेंगे? फिर चिंतन, स्टडी। कोई भी टॉपिक लिया जा सकता है, जैसे उस दिन मुरली में था एयर कंडीशन का टिकट, टॉपिक ले लेना एयर कंडीशन टिकट, किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ लिखना है। जितनी ज्यादा धारणा होगी, जितना जास्ती योग होगा, उतना जास्ती धारणा होगी आज की मुरली में। टॉपिक्स निकालना, लिखना और उसके ऊपर चिंतन करना, तो मुरली का नशा चढ़ेगा। खाली मुरली सुनने से नहीं होगा, मुरली का क्या करना पड़ेगा? अध्ययन, स्टडी, सेल्फ स्टडी। एक है दो प्रकार की स्टडी, एक है क्लास स्टडी, एक है क्लासरूम, एक है होम स्टडी। क्लास वर्क, होमवर्क, दो है। तो मुरली जब सुनते हैं सुबह, तो टॉपिक्स नोट कर देंगे 5 टॉपिक्स एवरी डे, और फिर उन टॉपिक्स पे सारे दिन भर सोचते रहना है, लिखना है, ठीक है? तो एक विधि है लिखना, टॉपिक्स निकालना, चिंतन करना, तब कहीं मुरली का नशा चढ़ेगा। नहीं तो कितनी मुरली आ रही है और मुरली जा रही है, मुरली आई और मुरली चली गई, हमें पता ही नहीं, कुछ भी इधर इंप्रेशन नहीं पड़ा, इम्प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल। एक डायरी बनानी है, क्या करेंगे? एक डायरी, स्पेशल डायरी, जिसको नाम देंगे चिंतन डायरी। डायरी का नाम क्या होगा? चिंतन डायरी। उसमें क्या लिखेंगे? टॉपिक्स। टॉपिक लिख के 3 रोज की मुरली डेट और आज की मुरली से 5 टॉपिक्स। एक दूसरा टॉपिक आज की मुरली से, बाबा ने आज नाउम्मीदवार बनने के लिए नहीं कहा, नाउम्मीदवार नहीं बनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हाउ नॉट टू बिकम होपलेस, ये टॉपिक है। हाउ नॉट टू बिकम होपलेस, होपलेस कैसे न बने, ये टॉपिक लिख दिया। अब पूरा दिन भर उसके ऊपर स्टडी करना है। टॉपिक्स लिखना है सुबह 8-9 बजे से पहले, ठीक है? और फिर सारे दिन भर टॉपिक्स देखते रहना, और क्या लिखा जा सकता है उनके ऊपर, क्या सोचा जा सकता है वो लिखना है। वो जो डायरी होगी उसमें केवल चिंतन लिखेंगे, मुरली नहीं लिखना है, टॉपिक्स और चिंतन, टॉपिक्स और चिंतन, जर्नी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, फाइव टॉपिक्स एंड चिंतन। वो टॉपिक्स कहीं से भी लिए जा सकते हैं, कहीं से भी उठाओ, पूरा मुरली का एक ही शब्द ले लो, एक मुख्य शब्द जो आया है उसको उठाना और लिखना। तो मुरली का नशा चढ़ेगा पढ़ने से, लिखने से, अध्ययन करने से, स्टडी करने से। और एक चीज इसमें जुड़ी है, आपस में चर्चा करना, डिस्कशन। किसका डिस्कशन करेंगे? मुरली का। कैसे करेंगे मुरली डिस्कशन? कैसे करेंगे? एक दूसरे से पूछना, आज स्लोगन में क्या था बताओ, आज वरदान में क्या था बताओ, आज सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी थी मुरली में, पूछना एक दूसरे से। जब भी मिलो तो आपस में पूछना, मुरली डिस्कशन करना बीच बीच में, ठीक है? तो पहली मस्ती है M फॉर मुरली, दूसरा है MA फॉर अमृत वेला। एकदम रेगुलर अमृत वेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करना, इधर उधर नहीं देखना, सामने देखो बाकी, नहीं तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। और बाकी जो रोज रोज अमृत वेला मिस करते रहते हैं, वो मन ही मन हाथ खड़ा करो, स्थूलाद नहीं। रोज रोज यदि अमृत वेला मिस होगा तो शक्ति कम हो जाएगी, धारणाएं नहीं होगी, डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, होपलेसनेस होगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, थोड़े दिन मुरली सुनेंगे छोड़ देंगे। जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कल से हम अमृत वेला पक्का करना है, फिक्स टाइम। यदि नहीं उठते और सब कुछ कर लिया उसके बाद भी नहीं उठते तो एक दूसरे को कहो, फोन करने को, मिस कॉल देने के लिए। 3:30 बजे अपनी सखी से कह देना, क्या कहेंगे, कॉल कर दे या मैसेज कर दे या कुछ कर दे, मैसेज नहीं कॉल ही करे तो अच्छा, कॉल करने को कहो, उठाने को कहो किसी को कि हमको उठाओ। और उठने के बाद अलर्ट होके, आज सुबह भट्टी में थे सब लोग, तो उसमें हमने अमृत वेले की सुबह बात की थी विस्तार से, 16 सूत्र अमृत वेले। तो अमृत वेले को पक्का करना, बहुत मिस कर दिया, मिस जितना करेंगे उतना ही अच्छा नहीं लगेगा। और अगर रोज करे, 3 दिन रोज करो, पहले तो 3 दिन, 3 दिन होने के बाद फिर 7 दिन बढ़ाओ उसको, फिर 7 दिन होने के बाद 21 दिन, फिर आदत पक्की हो जाएगी। फिर चाहे कितने भी बजे सो, कुछ भी करो, अपने आप उठेंगे। तो इस हैबिट को पक्का कर देना। और अमृत वेले यदि पक्का हो जाए तो वो भी एक क्या है, मस्ती, नशा। सारे दिन भर उसका प्रभाव चलेगा, पावरफुल डे, जैसा दिन की शुरुआत वैसा पूरा दिन। दिन का शुरुआत चालू हो गया 5 बजे, सारा दिन कमजोर, 6 बजे कमजोर, 7 बजे कमजोर। अर्ली मॉर्निंग चालू किया, अशरीरी हुए, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव किया, सर्व संबंधों का अनुभव किया, विश्व को सकाश दी, अशरीरी हो गए जैसे अभी हुए थे। वो सारा रोज अगर हो तो सारे दिन भर पावरफुल स्टेज रहेगी, अलौकिक नशा और मस्ती रहेगी। फिर दुनिया में जो होना है होने दो, हम पावरफुल रहेंगे। तो दूसरी कौन सी मस्ती है, अमृत वेला, MAS, एस फॉर सर्विस, अपने आप को योग्य टीचर बनाना है। क्या करना है, टीचर, उसके लिए एक कला सबको सीखनी है, दो कला, एक है भाषण देने की कला और दूसरा है भाषा। तीसरा भी ले लो, भाषण देने की कला, भाषा, भाषण और भाषण, ये तीन काम सबको आने चाहिए। सबसे पहला भाषा, कौन सी भाषा सीखेंगे, सीखेंगे कौन सी भाषा सीखेंगे, नेपाली, हिंदी भाषा सबको आनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं बोलते हैं तो बोलना चालू करना, नियम बनाना, हिंदी में ही बात करना, चाहे कोई भी मिल जाए, चाहे कोई भी मिल जाए, नियम कर दो उसको। सोचना हिंदी में, बाबा से अमृत वेला बात करना हिंदी में, लिखना हिंदी में, क्योंकि बिना हिंदी समझे मुरली नहीं समझ में आएगी। जो समझ में आ रही है वो ऊपर ऊपर की आ रही है, हिंदी को सीखना है। तो पहला भाषा, कुमारी अर्थात जिसको भाषा पर कमांड हो। दूसरा भाषण, जब भी भाषण देने का चांस हो तो सामने आके भाषण देना है, बुलाना ना पड़े, आओ आओ आओ, फिर किसी को भेजना पड़े, इसको लेके आओ, फिर उसको लेके आओ, खुद ही आ जाना है। तीसरा है भाषण, भाषण अर्थात अनुभव कराने की कला। भाषण को सीखो, भाषा को सीखो और भाषण देने की कला, ये तीन कलाएं आनी चाहिए। सेवा में पहले स्व सेवा और फिर विश्व की सेवा। स्व सेवा अर्थात स्वयं को योग्यताओं से भरना, स्व सेवा अर्थात स्वयं को स्किल्स, गुण, गुणों से भरना। एक और कला जो है वो है कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है जो यज्ञ में बहुत काम आएगी अगर आपने सीख ली, हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग, लेटर फॉर्मेट करना, फटाफट प्रोफॉर्मा बनाना, प्रोग्राम बनाना, ये आर्ट है। तो सबने हो सके तो टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर लेनी है, फटाफट टाइपिंग सीखना है, ठीक है। जो नहीं ज्वाइन करना चाहते खुद ही सीखे, सीखना रोज प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप सीखेंगे। पहले इंग्लिश आसान है और फिर हिंदी टाइपिंग, ये दो टाइपिंग है जो सीखना है। और यदि हो सके तो ड्राइविंग, वो भी एक कला है जो काम आएगी, कभी भी काम आ सकती है भविष्य में। तो सेवा में पहले स्व सेवा और फिर यज्ञ की सेवा, विश्व की सेवा, ज्ञान सुनाने की सेवा, 7 दिन का कोर्स कराने की सेवा, प्रदर्शनी समझाने की सेवा, भोजन बनाने की सेवा, भोजन खिलाने की सेवा, पाक शास्त्र, आत्माओं को यहां से मधुबन लेके जाने की सेवा। अगर आपको कहा जाए 50 की पार्टी को लेके जाना है, कौन तैयार होगा, हाथ खड़े करो, मधुबन में 50 लोगों को लेके जाना है। देखा, एक तैयार हो गई, ऐसे चाहिए पक्का, और कोई नहीं रहेगा, सारी जिम्मेवारी आप पर, एक भी माता इधर उधर मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो माता इधर जाती है, इधर भागती है, उधर भागती है और गुम। और ट्रेन में यदि आप माताओं को लेके जा रही हो, ठीक है, और उसमें से एक स्टेशन पर एक माता उतर गई और ट्रेन चालू होकर आगे चले गए, फिर आपको दूसरे स्टेशन पर पता चला माता जी है ही नहीं, तो क्या करोगे, चैन, अभी दूसरा स्टेशन आ चुका है, माता जी गुम, बड़ी मुश्किल से आई थी, सारे घर वाले विरोध है, अब क्या करोगे। यहां से पार्टी लेके गए मधुबन और वहां पर एक माता को हार्ट अटैक, हम क्या करोगे, ये परिस्थिति है, यहां से जा रहे मधुबन और बीच में बैग चोरी हो गई, है? एक दिन हो गया था। ऐसे टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, कहां फोन लगाना, किससे बात करना, कैसे क्विक एक्शन लेना है, वो सारा चाहिए। बुद्धू जैसा बैठने जाने, मैं क्या करूं, माताजी खो गई, माताजी उधर रो रही, आप इधर रो रहे हो। तो पुलिस से बात कैसे करनी है वो भी तो पता चाहिए, डर डर के करेंगे तो कैसे होगा। सारी स्किल्स, यहां से आत्माओं को मधुबन ले जाना, मधुबन में घुमाना, वापस लेके आना, भाइयों से कैसे बात करना, एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में कैसे बात करना, टोली में क्या करना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, हैंडल कैसे करना परिस्थितियों को, मैटर को, चीजों को, प्रॉब्लम्स को, कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस, सारी स्किल्स अपने अंदर धारण करनी है। ठीक है, तो सेवा में ये सब आ जाएगा। MAST, तो सेवा क्या भी अपनी एक नशा है, मस्ती है। टी फॉर तपस्या, तपस्या में स्वयं को मगन रखना है, तब नहीं जब भट्टी का प्रोग्राम हो, हर दिन अपना भट्टी का प्रोग्राम खुद बनाना है। जब छुट्टी हो तो भट्टी का प्रोग्राम बनाना कि आज हम 4 घंटा योग की भट्टी करेंगे, आज हम 4 घंटा ज्ञान की भट्टी करेंगे। ज्ञान की भट्टी अर्थात ज्ञान पढ़ना, ज्ञान की भट्टी अर्थात ज्ञान की लेन देन, डिस्कशन ऑफ नॉलेज, एक टॉपिक लेना और ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग अर्थात एक टॉपिक ले लिया, मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में, और सब लोग अपनी आइडियाज रैंडम देते जाए, दैट इज नोन एज ब्रेन स्टॉर्मिंग। कोई भी एक टॉपिक, जैसे अभी एक टॉपिक निकला कि यहां से जाते जाते, मधुबन जाते जाते एक माता गुम हो गई, ये टॉपिक है, क्या करना चाहिए, तो सब लोग अपनी अपनी आइडियाज देंगे, तो वो टॉपिक थोड़ा सा क्लियर होगा। इसको कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ऐसा टॉपिक लेना और डिस्कशन के लिए ग्रुप में फेंक देना, तो सब अपने अपने विचार देंगे उसके ऊपर, तो दिस इज नोन एज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो टी फॉर तपस्या, तपस्या अपनी करनी है। 2 प्रकार की तपस्या, ज्ञान भट्टी और योग भट्टी, एक योग की और दूसरी ज्ञान की। अपने लिए खुद प्रोग्राम बनाना है, योग भट्टी का और ज्ञान की भट्टी का। आज संडे है, आज छुट्टी है, टाइम है, तो ज्ञान भट्टी करो, ज्ञान की बुक्स लो, किताबें लो। सुबह हमने कहा था अमृत वेले की किताब, वो किताब लो, किताब पढ़ना चालू करो। ज्ञान की ढेर सारी किताबें हैं, धीरे धीरे सारी पढ़ना चालू करो, तो ज्ञान बढ़ेगा, चिंतन बढ़ेगा, मनन बढ़ेगा। नहीं तो कहेंगे हमारा मनन होता ही नहीं, क्या मनन करना है पता ही नहीं। जब रॉ मटेरियल चाहिए मनन के लिए, क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, वो आएगा किताबों से। तो टी फॉर तपस्या, MAST, आई फॉर इंटॉक्सिकेशन अर्थात नशा। व्यक्ति को नशा कब चढ़ता है? नशा, एक दारू पीने वाला व्यक्ति है, एकदम नशा कब हो जाता है उसको, कब होता है? जब ज्यादा पिएगा तब नशा, अगर डोज कम है तो नशा नहीं चढ़ेगा। एक दूसरा, बार बार पीने से, एक बार पी लिया और हो गया काम पूरा, नशा नहीं चढ़ता है। तब तक पीना चाहिए जब डोलने नहीं लगे, जब तक। तो बार बार पीना। तीसरा, कॉन्सेंट्रेटेड पीना है, डाइल्यूट अगर पिएंगे तो नशा नहीं चढ़ता है, बहुत पावरफुल अगर चाहिए तो कॉन्सेंट्रेटेड पीना चाहिए। और चौथा, ग्रुप में अगर पिए तो ज्यादा ही नशा चढ़ जाता है, थोड़ा drink in groups. तो यहां पर यदि नशा चढ़ना हो तो क्या करना पड़ेगा, डोज बढ़ाओ पहले तो। अभी बहुत ही कम डोज है, ज्ञान और योग का डोज बढ़ाएंगे तो नशा चढ़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा पी लिया और आराम से घूम रहे हैं, नशा चढ़ा ही नहीं। नशा चढ़ने की निशानी अर्थात व्यक्ति डोलना चाहिए ऐसे 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 ऐसे, कहीं गिर जाना चाहिए, ये नशे की निशानी है। उसको कुछ खबर नहीं होती है, दिन है रात है, आंखें लाल लाल, हाथ कांपते हैं, बोलता नहीं, बोल नहीं सकता ढंग से, लड़खड़ाते कदम, जबान। तो नशे के लिए डोज बढ़ाओ, एक दूसरा नशे के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, बार बार पीना पड़ेगा। अमृत वेला एक बार मुरली सुन ली और काम पूरा हुआ, ऐसे नहीं होगा। मल्टीपल रीडिंग्स, बीच बीच में रिवीजन, तब कहीं नशा चढ़ेगा। और तीसरा कॉन्सेंट्रेटेड पीना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं कर दो उसको। कॉन्सेंट्रेटेड शराब अर्थात अव्यक्त वाणियां, बहुत पावरफुल नशा है उसमें, तो अव्यक्त मुद्दियों को पीना पड़ेगा। रूहानी पियक्कड़, स्पिरिचुअल ड्रंकर्ड्स, स्पिरिचुअल ड्रंकर्ड्स होता तो ऐसे स्पिरिचुअल ड्रंकर्ड्स बनना है, जिसने बहुत पी रखी है। फिर चौथा ग्रुप्स में पीना पड़ेगा, ग्रुप में पीते तो ज्यादा नशा चढ़ता है, अकेले में बैठ के पीता है तो कम चढ़ता है। इंटॉक्सिकेशन, नशा, ये भी एक मस्ती है, नशे की मस्ती। इतना स्वयं को नशा चढ़ाना है, ज्ञान का, योग का, धारणाओं का, सेवा का, प्राप्तियों का, भाग्य का, खजानों का। तो जितना अधिक नशा होगा उतनी अधिक मस्ती होगी। तो संसार में जो भी होना है होने दो, बस्ती को आग लगने दो और हम अपनी मस्ती में मगन रहेंगे। तो ऐसी पांच चीजें हैं, पहला मुरली, अध्ययन, स्टडी, चिंतन, मनन, डिस्कशन। दूसरा एम ए अमृत वेला, जो अमृत वेला नहीं करते हैं, लेट करते हैं, कभी कभी करते हैं, इररेगुलर करते हैं, उनको एकदम रेगुलर कर देना है। मदद लो साथियों की, एक दूसरे को कहो उठाने के लिए, हेल्प करेंगे। अपना अलार्म भी सेट करो और किसी को काम भी दे दो कि मुझे उठा देना, तो उठाएगा ना, तो फिर हमको थोड़ा नशा आएगा। तीसरा सेवा, भाषा, भाषण और भाषणा, तीनों में स्वयं को ट्रेन करना है। और बहुत सारी छोटी छोटी स्किल्स जो है, कंप्यूटर स्किल, ड्राइविंग स्किल, एजुकेशन, जो भी आप पढ़ते हो उसमें भी परफेक्ट, ताकि वो यज्ञ के काम आए फ्यूचर में, वो स्किल्स, सारी स्किल्स। एम एस टी, टी फॉर तपस्या, दो प्रकार की तपस्या, ज्ञान तपस्या और योग तपस्या, ज्ञान की भट्टी और योग की भट्टी में खुद को बिठाना है। और लास्ट है आय, आय अर्थात इंटॉक्सिकेशन, उसके लिए चार चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले डोज बढ़ाओ, दूसरा बार बार पीते रहना, सुबह पीना, शाम को पीना, तीसरा कॉन्सेंट्रेटेड पीना, डाइल्यूटेड नहीं, और चौथा बिंज ड्रिंकिंग, उसको कहा जाता है बिंज ड्रिंकिंग इंग्लिश में। तो साथियों के साथ अर्थात ग्रुप डिस्कशन करना, तो ऐसी हमको रूहानी खुमारी, मस्ती, नशा, इन सभी बातों से जुड़ेगा। ओम शांति।